अब आयत नंबर 15 से 23 तक अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाई है, सोचने समझने की दावत दी है, क्योंकि आम तौर पर बिल अमूम अल्लाह ताला जब ये गौर व फिक्र की दावत देते हैं तो किस लिए दावत देते हैं? इसलिए कि इंसान जो है इन हकीकतों की तरफ गौर नहीं करता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान ये जो हकीकतें हैं जो तेरे इर्द गिर्द हैं, जरा तो इस पर गौर तो कर। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा, वही तो है जिसने पैदा किया, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को। पहले आसमान की बात थी, आसमानों की, अब जमीन की बात आ गई। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बनाया, जलूलन मुसखर नरम। और आप पढ़ चुकी हैं ना कि इसके मानी क्या होते हैं, इसके मानी मुसखर के भी होते हैं। एक तो है ना किसी को जलील और रुसवा करना, तो जो चीज मुसखर हो जाए, जो चीज मुती हो जाए, तो अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए नरम बनाया, मुती कर दिया। क्यों? फमशू, बस चलो तुम, फी मना की भी हा, इसके रास्तों में। तो नून काफ बा, और यहां पे तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुम जो है वो जमीन के रास्तों में चलो। और आप देखिए कि यहां पे मनाकिब लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और एक तरफ जलूलुन और दूसरी तरफ मनाकिब, और ये अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत जो है वो दलील दी है अपनी कुदरत के लिए। और मनाकिब किसे कहते हैं? मनाकिब जो है ये कहते हैं, जैसे ये कंधे के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मोंडे के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि तुम जमीन के जो है वो मुंडों पर चलो, तुम जमीन के रास्तों पर चलो। तो क्या कहा कि तुम जमीन के रास्तों पर चलो, वह कुलू में रिस्क ही, और खाओ इसके रिस्क में से, वह इलैही नुशूर, और उसी की तरफ जिंदा होकर जाना है। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि मनाकिब मनकब की जमा है, और इसके मानी जो हैं ये कंधे के लिए भी आता है, और यहाँ पे इसके मानी रास्ते के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जमीन जो है इसके कंधे क्या हैं? मुफस्सरीन कहते हैं कि असल में जमीन को एक जैसे जानवर से की मिसाल दी गई है, जैसे जमीन की मिसाल एक फर्मा बरदार नाका से दी गई है, क्योंकि उसके अंदर रास्ते भी हैं, दर्रे वादियां कोहसार। अब जो नाका है उसके मनाकिब होते हैं ना मोंडे कंधे, अब इंसानों को इस नाका के जिस्म पर इस तरह फर्ज किया गया है गोया के वो इसके मोंडों और कंधों में हो। अब आप देखिए कि आम तौर पर किसी के जब चला जाता है तो जैसे कमर में बैठ सकते हैं ना, अगर कोई नाका, अगर कोई जानवर जो है मुती हो जाए तो क्या करता है इंसान, जंप करता है और उसकी कमर पर बैठ जाता है। लेकिन मोंडे, तो मुंडे जो है इसके मानी ये हैं, मुंडे और शाने के, कि कोई बहुत ही ज्यादा मुती हो, कि जानवर जो है कमर के साथ साथ अपने कंधे भी झुका दे। तो जमीन जो है अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसखर कर दी है, इसकी सतह को हमवार कर दिया है, ऊपर से इस पर नरम मट्टी फराहम की है, जमीन नरम है। और अगर आप जमीन पर गौर भी करें तो आप देखें कि जमीन कैसी है, कि ऐसा इसका मादा है कवाम कि ना तो पानी की तरह बहने वाला सयाल है, ना रुई और कीचड़ की तरह दबने वाला। तभी तो जो है हम इस पर जिंदा है ना, और इस पर जी रहे हैं। अगर लोहे या पत्थर की तरह, जैसे लोहे की तरह अगर ये जमीन सख्त होती तो दरख्त, खेती, कुएं, नहरें, ये चीजें हमें जमीन में मिल नहीं सकती थी, ना हम इसमें इमारतें बना सकते थे। तो अल्लाह ताला ने इसको बड़ा मुतवाजन बनाया, इसके ऊपर एक क्रस्ट रखा है, और उस क्रस्ट पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। जमीन जो है अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस तरह सुधा दी है जैसे कि जानवर को सुधा दिया जाए, और जानवर, ऐसा जानवर को जलूल कहते हैं जो सवारी देने में शोखी ना करे। और मनाकिब जब उसके मोंडे हुए तो जानवर ने जो है वो कमर ही नहीं, अपनी पीठ ही नहीं, गर्दन भी, अपने मोंडे भी जो है वो सवारी के लिए पेश कर दिए हैं। बड़ा ही मुती जानवर। तो जमीन को ए इंसानों तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया कि इसके मोंडों पर चढ़ते हो, इसको चीरते हो, इसको फाड़ते हो, और जमीन में इंसानी जिंदगी की जरूरियात के लिए बेशुमार चीजें हैं। चलो इसकी छाती पर और खाओ अल्लाह का दिया हुआ रिस्क। तो मनाकिब बाज ने इसका तर्जमा फिर इसकी बुलंदियां भी की हैं, बाज ने इसका तर्जमा फिर इसकी वादियां की हैं, इसके रास्ते किए हैं। गोया कि पूरी जमीन जो है वो अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर कर दी है। तो किसके कब्जे में है? इंसान के कब्जे में है। फिर दूसरी बात आप देखें कि सिर्फ जो है वो मैं और आप ही नहीं, बल्कि जितने भी और जानदार हैं उन वो भी इसमें से रिज्क खाएं। यहाँ पे क्या फरमाया कि वकुलू मिन रिज्क़ही, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क जो है वो खाओ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जमीन खुद ब खुद तुम्हारे ताबे नहीं है, हमने इसको तुम्हारे ताबे किया है, ये मेरी हिकमत और कुदरत का करिश्मा है। तो क्या करो, फिर अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ। और जमीन से रिज्क कौन खाता है? आप देखें कि जितने भी जो है वो जमीन के अंदर पहाड़ है वो भी हमारे लिए एक रिस्क है, जमीन के ऊपर जितने हैवान चलते हैं वो भी हमारे लिए रिस्क है, जमीन पर जितने पौधे हैं वो भी हमारे लिए रिस्क है। तो गोया के सारी चीजें, नबातात, हैवानात, जमादात, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा किया वो हमारे लिए पैदा किया है। और हर पौधे की जिंदगी में जो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो हवा में मौजूद होती है, तो इंसान इसको छोड़ देता है, पौधे इसको ले लेते हैं। तो और पौधों का अमल जो है वो क्या है कि सूरज की रोशनी में मुकम्मल होता है। दरख्तों के पत्ते दरअसल दरख्तों के फेफड़े हैं। दरख्तों के फेफड़े क्या हैं? दरख्तों के पत्ते। ये सूरज की रोशनी में इस काबिल होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करें और कार्बन को ऑक्सीजन से अलहदा कर दें और ऑक्सीजन को वापिस कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन मिली हुई होती है ना। अब जब सूरज की रोशनी आती है तो ये कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, जिसे जड़ों के जरिए पौधा पानी की शक्ल में अक्स करता है। फिर पानी की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अलहदगी हो जाती है और फिर ये इसमें से जो इंसान को चाहिए इंसान ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन जो है वो फिर पौधे ले लेते हैं। फिर इसी तरह ये साइंस की एक किताब है, ईमान की दावत, साइंस ईमान की दावत देती है। ये महमूद साले फुल्की जो है ना, इनकी किताब का तर्जमा है उर्दू में, साइंस ईमान की दावत देती है। बड़े खूबसूरत इसमें इन्होंने जो है ना वो दलाइल दिए हैं। इसमें से वो ये भी कहते हैं कि तमाम नबातात, तमाम जंगलात, तमाम झाड़ियां, पानी पर पाई जाने वाली काई, तमाम फसलें दरअसल कार्बन और पानी से मिलकर बनती हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि नाइट्रोजन का भी जमीन के रिस्क के साथ गहरा ताल्लुक है। फिर वो ये भी बताते हैं कि हम हाइड्रोजन को साइंस के, हम जैसे हाइड्रोजन जो लेते हैं तो इसको सांस, जैसे सांस लें तो हाइड्रोजन को सांस के जरिए नहीं जज़ब कर सकते, बल्कि क्या है कि ये अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसा एक अमल रखा है कि खुद ब खुद जो है ये हमारे लिए नबातात, हैवानी जिंदगी के जरिए से ये चीज जो है वो काबिल अमल हो जाती है। तो रिस्क की अगर आप इसको वाजे करना चाहें, इसको समझना चाहें, तो इसकी बड़ी तफसील है जो हमारे सामने आती है कि पौधे, हवाएं, बारिश और इसके अलावा ये जानवर, तो पूरी की पूरी जमीन जो है इस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की पैदावार जो है वो मेरे और आपके लिए रखी। और आप देखें कि मौसम बदलते हैं, फल बदल जाते हैं, और इसी तरह जिन्स अजनास जो हम खाते हैं वो डिफरेंट होती है, कभी चावल, कभी गंदम, कभी मकई, कभी बाजरा, वाइलैहि नुशूर। तो जमीन की दलील देकर, रिस्क की दलील देकर कहा कि फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है, जो तुम्हारा खालिक है ना वही तुम्हारा मालिक भी है, वही रोजे जजा का मालिक है, उसकी तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, जिंदा होकर जाना है। तो क्या बात है कि जब जमीन पर चलो फिरो, उसका दिया हुआ रिस्क खाओ, तो उस अल्लाह को फिर भूल ना जाओ। अब मजीद कहा, अमिन तुम मन फिस समाई, क्या तुम इस बात से अमन में हो वो जो आसमान में है? इसके मानी क्या है कि क्या तुम बेखौफ हो जो कुछ आसमान में है? तो असल में यहां पर जो है वो اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم زمین پر رہ رہے ہو اور کھا رہے ہو، مزے کر رہے ہو، وہ جو عرش پر ہے جلوہ گر، کیا تم اس کو بھول گئے ہو؟ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ بس صرف اوپر ہی ہے، لیکن آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ ایک طرف سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہتے ہیں کہ من فی السما، یہاں پہ آمن تو من فی السما، کہ وہ رب جو کہ آسمان میں ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ اصل میں یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ اللہ کا تصور کرتا ہے تو اس کا انسان کا تصور بلندی کی طرف جاتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے یہ بات کہی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایک جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کافروں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو اور چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں کو اور ظاہری طور پر گناہ کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں پر ہے کیا تم اس سے ڈر گئے ہو؟ تمہیں اسے ڈرنا چاہیے، کیا تم اس سے جو ہے بے خوف ہو گئے ہو؟ امن ہے نا، بے خوف ہونا. آمین تم من فی السمائی، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو وہ آسمان میں ہے؟ ان یخصفا، کہ وہ تمہیں دھنسا دے. اور خسوف ہے نا، خسف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی کا زمین کے اندر ہی جو ہے وہ دھنس جانا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ چونکہ زمین پر چل رہے ہیں، اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی، تو اللہ اسی زمین کے اندر تمہیں دھنسا دیتا ہے. بکم الارض، زمین میں. فائزہ ہے تمور، اور یکا یہ زمین جو ہے یہ ہچکولے کھانے لگے، جھکولے کھانے لگے. اور آپ پڑھی چکی ہیں کہ مورا، مورا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مورا کے معنی ہے کپ کپانا، کانپنا. اور یہ لفظ جو ہے آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں سورت طور میں. اچھا بہرحال، تو وہاں پہ جب آپ نے یہ لفظ پڑھا تو اس کے کیا معنی پڑے تھے؟ حرکت ہونا، ہلنا، اور ایسے ہلنا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح پایا جائے، یعنی کانپنا اور پھر بری طرح کانپنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے کرے کہ زمین بری طرح جو ہے وہ جھکولے کھانے لگے. یوم تمور السماء مورا، تو یہ آپ نے پڑھا تھا، اور سورت نمبر تھی 52، سورت نمبر 52 میں آپ نے پڑھا، اور 52 سورت ہے سورت طور. سورت طور کی آیت 9 میں آپ نے پڑھا کہ یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر. اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اس کے بنیادی معنی حرکت اور تیز رفتاری کے ہیں، غبار بن کر ہوا میں کسی کا اڑ جانا، یا پھر کسی چیز کا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے پیچھے ہلنا، لرزنا، توازن کھو دینا. تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تو مور بھی کیا کرتا ہے کہ تیزی سے حرکت کرتا ہے نا، تو مور. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے. تو ایک طرف زمین کا ذکر آیا، دوسری طرف آسمان کا. ام امن تم من فی السمائی، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پر پتھرو کرنے والی ہوا بھیج دے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ تم پر پتھرو کرنے والی ہوا بھیج دے. تو حاسب جو ہے ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو جس کے اندر پتھر ہوں، کہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے. کہاں سے؟ آسمان سے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہے، میرا ڈراوا کیسا ہے. تو زمین اور آسمان دونوں کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. قوم لوط پر کس کی بارش ہوئی تھی؟ پتھروں کی. اور اصحاب الفیل پر کس کی بارش ہوئی تھی؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ ابراہ اور اس کا لشکر جو ہاتھی والے تھے ان کا بھی کیا انجام ہوا، اور قوم لوط کا کیا انجام ہوا. تو وہ اللہ جیسے چاہے تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈراوا کیسا ہے، میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. تنبیہ سے مراد کیا ہے؟ نذیر سے مراد، کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ وہ تنبیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کی، اور اس سے مراد ہے قرآن پاک کے ذریعے کفار مکہ کو جو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جھٹلایا کن لوگوں نے جھٹلایا؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. من قبلہم، جن سے پہلے تھے. کن سے پہلے؟ اہل مکہ سے پہلے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسا تھا ان پر میرا عذاب، میری پکڑ کیسی تھی. تو ایک انہوں نے نہیں جھٹلایا، قوم لوط، اصحاب الفیل اور بہت سی قوموں نے جھٹلایا، اور پھر اللہ کا کیسا عذاب ان پر آیا، کیسی تھی بھی میری گرفت. تو جن بھی قوموں نے اللہ رب العزت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت گرفت کی. پھر فرمایا اولم یرو الی الطیر، زمین اور آسمان کے بعد اب پرندوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اولم یرو الی الطیر، اور طیر اسم جنس ہے، کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ فوقہم، اپنے اوپر. تو پرندوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ صافاتن، جو ہے وہ پر پھیلائی ہوئے. اب صافاتن جو ہے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور صافات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب سے ہے نا، سواد، فافا، اور معنی ہے بالکل ایک لائن کے اندر، ایک قطار کے اندر. تو یہ لوگ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ صف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور صف بھی کہاں پہ؟ آسمان پر، سروں کے، ان کے سروں کے اوپر. اور وہ پرندے جو ہیں، ایک ایک پرندہ ہوا میں جب اڑ رہا ہوتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر لائن بھی بنائے ہوئے ہوتا ہے. صافاتی، پر پھیلائے ہوئے. ویقبضن، اور جو ہے قاف با دواد، یہاں پہ صف کا اپوزٹ آیا ہے. تو صف کیسے ان کی بنتی ہے؟ جب وہ پرندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سیدھی قطار بناتے ہیں، کیونکہ سواد فافا کے معنی ہے ہر شے کی سیدھی قطار. تو صفت طیر کے معنی ہے پرندوں نے اپنی اڑان میں اپنے پروں کو قطار کی طرح سیدھا کر دیا. پرندوں کا اپنے پروں کو ہوا میں پھیلا دینا، بالکل بے حرکت جو ہے وہ بنا دینا. آپ کبھی دیکھیں، کئی دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ آپ کبھی عصر کے وقت بچوں کو پارک لے کر جائیں، اور اس وقت دیکھیں پرندوں کی اڑان، اور ایک پرندہ ان کا لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور باقی بالکل ایک لائن میں پروں کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر وہ پر پھیلائے پھیلائے پھر اپنے پروں کو سپیڑ بھی لیتے ہیں. اس کو یہاں پہ کہا گیا ویقبضن، جیسے کسی چیز کو مٹھی میں لے لینا، قبضے میں لے لینا، بند کر لینا. اچھا، پھر کیا کرتے ہیں؟ جو آگے لیڈ کرنے والا پرندہ ہے تھک جاتا ہے نا، وہ پیچھے آ جاتا ہے، اور اگلا جو پیچھے ہوتا ہے پرندہ وہ آگے چلا جاتا ہے. ایک ان کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے، آپ اس میں بھی، آپ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ریسرچ ان کی کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ان کی اڑان ہے اور کیسے ان کی پرواز ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو ڈسپلن ہے کہ اڑنے والے پرندے پر پھیلاتے بھی ہیں اور جو ہے وہ سکیڑتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان، کیا تو ان پرندوں کو نہیں دیکھتا؟ ما یوم سے کوہنہ، نہیں ان کو تھامتی، کوئی بھی ان کو نہیں تھامتا، الا الرحمن، مگر رحمان. تو آپ کو پتا ہی ہے کہ میم سین کاف کے معنی کیا ہیں؟ موجود چیز کو روک لینا، جیسے کسی چیز کے ساتھ امسک، عورت کے لیے آیا تھا نا کہ یا اس کو رخصت کر دے یا تو اس کو روک لے، تو اس کے ساتھ چمٹ جانا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو ان پرندوں کو ہواؤں میں، فضاؤں میں کون پکڑے ہوئے ہے، کون تھامے ہوئے ہے؟ ہر پرندوں کو اڑنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ پرندوں کو ہوا کے قانون کا پابند کس نے بنایا؟ اتنے بھاری جسم ہوتے ہیں پرندوں کے، لیکن وہ زمین پر گرتے نہیں ہیں. ایک گریویٹی ہے، ایک جو ہے تشیہ ثقل ہے کہ پرندے جو ہیں وہ اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، صف بندی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے، ایک عجیب تماشا ہے، کمال ہے، جمال ہے. उसमें यकजहती है। तो इनको ये सब कौन करता है? इल्ला रहमान, सवाए रहमान, यानी अल्लाह ही करता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, वो ही हर चीज का निगेबान है। परिंदे ही नहीं, आसमान ही नहीं, जमीन ही नहीं, बल्कि कायनात की एक एक चीज का जो है वो अल्लाह जो है वो निगेबान है। अल्लाह ताला हर मखलूक की जरूरियात को पूरा कर रहा है। फिर फरमाया अम्मन हाज़ अल्लज़ी, एक सवाल है जो मजीद सामने रखा है, भला कौन है वो जो हुआ वो जुंदुल्लकुम, लश्कर तुम्हारा। पूछ रहे हैं अल्लाह ताला कि ये जो मुनकरीन जो हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, भला इनके पास कोई लश्कर है? यंसुरुकुम, के मदद करे तुम्हारी, मिन दूनिर रहमान, अल्लाह के सिवा। तो अहले मक्का से पूछा जा रहा है क्या अल्लाह के सिवा भी तुम्हारा कोई जो है वो लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? तो ये लोग धोखे में क्यों पड़े हुए हैं? इसके मानी ये हैं कि जैसे अहले मक्का ये समझते थे ना कि फला पीर, फला वली या फला खुदा हमारी मदद करता है। तो पूछ रहे हैं अल्लाह ताला कि कोई है अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी मदद करे? तुम किस धोखे में पड़े हुए हो? अगर अल्लाह जमीन से रिस्क देना बंद कर दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे? इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, नहीं काफिर मगर धोखे में, गुरूर। तो यहां पे बताया जा रहा है कि काफिर जो हैं ये धोखे में हैं। बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा किया है। और ये धोखे में कौन मुब्तिला करता है इंसानों को? शैतान धोखे में मुब्तिला करता है। तो यहां पे एक तरफ जुंद का लफ्ज इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ गुरूर। तो मानी असल में ये है कि काफिरों के लश्कर और जत्थे जो हैं वो अल्लाह के अजाब से उनको बचा नहीं सकेंगे। अल्लाह जब उनको पकड़ेगा तो शैतान जो आज कहता है कि मैं साथ हूं और धोखा देता है, तो ये जो है इनको बचा नहीं सकेगा। और नफ्स भी हो सकता है और उनके दोस्त भी हो सकते हैं। और सिर्फ अहले मक्का ही नहीं, आज के लोगों के ऊपर भी ये आयात जो है पूरी उतरती हैं, वो लोग जो कि अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है एक और सवाल सामने रखते हैं, अम्मन हाज़ल्लज़ी, भला कौन है वो जो अल्लज़ी वो जो यरज़ुकुकुम, रिस्क दे तुम्हें, इन अमसका रिस्का हो, अगर वो रोक ले रिस्क देना, अगर अल्लाह रिस्क देना रोक ले तो कोई है जो तुम्हें रिस्क दे? बल लज्जू, बल्कि वो लज में है, बल्कि वो अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, फी उतुविन, सरकशी में, वनफूर और भागने में। अब आप देख लें कि यहाँ पे लज्जू जो है वो इस्तेमाल किया गया। और लज्जू के मानी क्या हैं? आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, लुज्जतन, लुज्जतन लाम जीम जीम से है, पानी की गहराई, पानी का इतना गहरा होना कि जहां पानी सबसे ज्यादा गहरा हो, लुज्जुल बहर, बहरे लुज्जीन, आप पहले ही पढ़ चुकी हैं, गहरा दरिया या समंदर। तो लुज्जतन समंदर की या पानी की इंतहाई गहराई के लिए कहा जाता है। तो अब ये कहां पे हैं? ये जो हैं बहुत ज्यादा गहराई के अंदर हैं, बहुत आगे तक चले गए हैं। कहां, किस में? फी उतुविन, सरकशी में। और आप पहले भी ये लफ्ज पीछे भी पढ़ चुकी हैं ना, अतत आपने पढ़ा था ना, तो क्या मानी अतत के? सरकशी और तुगयानी। तो वो लोग जो हैं उतुविन सरकशी में जो हैं बहुत गहराई में चले गए हैं। नुफूर, और नुफूर जो है ये मस्दर है, इसके मतलब है भागना, दूर होना। और नफारा से है ये लफ्ज। तो ये लोग जो हैं और ज्यादा भाग रहे हैं, और ज्यादा दूर हो रहे हैं, सरकशी में और भिदकने में ये अड़े हुए हैं। जैसे किसी पर जो है वो नसीहत का कोई असर ही ना हो। फिर इसके बाद एक और दलील दी है, अफामई यमशी मुकिबन, अच्छा वो शख्स जो चलता है मुकिबन। मुकिबन जो है ये ओंधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मुकिबन जो है ये इसका मसदर है इकबाब, इकबाब मसदर इसका इस्तेमाल हुआ है। और ये लफ्ज इसके मानी क्या होते हैं? जैसे सर नीचे कर दिया जाए और पांव को जो है वो ऊपर कर दिया जाए। आम तौर पे होता क्या है कि पांव से चला जाता है ना, तो पांव की बजाय जो है वो अगर कोई सर के बल चले तो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। गोया के जैसे अकल का इस्तेमाल करके किसी को बात को समझ लेना चाहिए ना, तो अगर बात को जो है वो कोई समझे ही ना तो उस वक्त इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है कि गोया के ये लोग जो हैं ये उल्टे हो गए हैं। मुकिबन, ये गिरे हुए हैं, ये ओंधे हैं। और यहाँ पे दरअसल ये कुफ्र करना क्या है, ये तौहीद का इनकार करना है। और ऐसे है जैसे कि सीधे रास्ते की बजाय कोई शख्स जो है फिर उल्टा चलना शुरू कर दे, और अल्लाह को ये अमल जो है ये बहुत पसंद है। तो इसका रूट क्या है, काफ बाबा है ना, आप पहले भी इसको पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी क्या है कि किसी का जो है वो किसी को उलट देना, कब्बा आपने पीछे पढ़ा था ना, कुब कुब फकुब किबू है ना, कि जहन्नुम में उनको उल्टा करके जो है वो डाल दिया जाएगा। तो ये वही लफ्ज है कि ये जो है क्या कर रहे हैं, ये लोग ऊंधे हैं, उल्टे हैं, अला वजह ही अपने मुंह के बल। आधा ज्यादा सीधी रास्ते पर है, अब ये जो उल्टे मुंह चल रहा है यानी पांव की बजाय अपने मुंह के बल चल रहा है, ये सीधे रास्ते पर है या फिर वो आधा ज्यादा हदायत पर है। अमन, वो शख्स जो यमशी चलता है सवीयन, सीधा पांव के बल चलता है, सिराते मुस्तकीम पर चलता है, अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। तो एक तरफ ये हैं मुफस्सरीन कहते हैं कि यहां पर जो है मोमिन और काफिर की कैफियत बताई गई है, तो अल्लाह को क्या पसंद है कि सीधे रास्ते पर चलना, अल्लाह को उल्टे रास्ते पर चलना तो पसंद नहीं है ना। अब यहां पे एक तरफ कहा जा रहा है कि एक है सर के बल चलने वाला, ये है उल्टा चलने वाला काफिर, और दूसरा है सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला, और ये है मोमिन। इन दोनों की इस आयत में मिसाल दी गई है, इनकी कैफियत बताई गई है कि वो लोग जो दुनिया में उल्टे चलते रहे, सिराते मुस्तकीम पर नहीं चलते रहे, तो कयामत वाले दिन इनकी हालत क्या होगी, कयामत वाले दिन जो है इनको मुंह के बल जहन्नुम में ले जाया जाएगा। वनाशुरहुम यौमल कयामती अला वजूहिम, सूरत बनी इसराइल की आयत 97 को आप दलील में ले सकती हैं कि कयामत वाले दिन मुंह के बल इनको इकट्ठा किया जाएगा, और ये बड़ा ही सख्त वक्त होगा कि इनको जो है वो मुंह के बल जो है वो इकट्ठा किया जाए। और आप सोचें कि किसी को मुंह के बल चलाना चलाया जाए, और बाज लोग ये गेम्स में और एक्सरसाइज में अपने आप को अगर उल्टा करें तो क्या होता है, क्या हाल होता है, और उस दिन उनको मजबूर किया जाएगा कि ये जो है वो सर के बल जो है ये चलना शुरू करें। अफा में यमशी मुकिबन अला वजह ही, भला सोचो जो शख्स मुंह ओंधाए चल रहा हो, आधा वो ज्यादा सही राह पाने वाला है, अम्मा यमशी सवियन या वो जो सर उठाए सीधा चल रहा है, अला सिरात मुस्तकीम एक हमवार सड़क पर। और सिरात मुस्तकीम क्या है, ए दीन सिरात अल मुस्तकीम, दीन इस्लाम। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में जब तौहीद की दावत दी, जब आखिरत की दावत दी, तो उस वक्त हाल क्या था कि हर शख्स जो है वो इस्लाम की दावत से जो था वो मुतारिफ हो रहा था, हर शख्स जो है वो इस्लाम जो है उसको समझ रहा था। तो और इतना खूबसूरत अंदाज था रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत देने का कि मौलाना हाली ने भी कहा, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। अब यहाँ पे भी डराया जा रहा है, और इतनी खूबसूरत मिसाल है ना, एक आयत के अंदर काफिर और मोमिन जो है इसकी तस्वीर खींची गई, और पूरी बात को समेट कर रख दिया गया है कि इस तरह इंसान के दो किरदार हैं, दुनिया में दो रवैये हैं। फिर फरमाया कुल, कह दीजिए, हुवल्लज़ी, वो जो, अल्लज़ी वो जिसने, अनशाकुम, अनशाकुम के मानी क्या होते हैं, पैदा किया तुमको, और वो अल्लाह जिसने पैदा किया तुमको, वजअला लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफिदा, और दिए तुम्हें और बना दिए तुम्हारे लिए, असमा समात यानी सुनना, वल अबसारा, और देखने की ताकते बसर से है, अबसार जमा वल अफीदा, और फुआद जो है ये क्या है, दिल, तो अफीदा फुआद। क्या कहा कि वो अल्लाह जिसने तुमको सुनने देखने और सोचने समझने वाले दिल दे दिए, कलीलम मा तशकुरून, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। तो मकसद क्या है बताने का, इंसान तुझे जानवर नहीं बनाया, और लोग कहते हैं कि फाइव सेंसेस होती हैं, यहाँ पे सिर्फ तीन का जिक्र किया गया, और तीन जो हैं हम बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। और मकसद क्या है इन तीन नियमतों का जिक्र करने का, कि अल्लाह ने कान इसलिए दिए ताकि तुम जो है वो हदायत की बातें सुनो, कुरान को सुनो, रसूल की बातें सुनो, अबसार, तुम्हें आंखें इसलिए दी ताकि तुम जो है ये नहीं कि सिर्फ जाहिर को देखो, बल्कि तुम जो है वो बसीरत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बसीरत होनी चाहिए, आंखें तो सबके पास है, बसीरत सबके पास नहीं है। अफीदा, और कल्ब नहीं कहा, अफीदा कहा, तो दिल के अंदर जो कैफियत होती है ना इंसान की, कि जिससे इंसान महसूस करता है, इदराक करता है, तो ये भी तो अल्लाह ताला कह सकते थे ना कि उजुन दे दिए, आइन दे दिए और कल्ब दे दिए, तो इसकी बजाय उजुन के अंदर समात होती है, आइन के अंदर बसीरत होती है, और कुलूब के अंदर अफिदा होती है। तो ये जो अंदर ताकतें हैं ना, कहा ये सारी तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करते, तुम मुझे पहचानते, लेकिन अफसोस कलीलम्मा तश्कुरून, कि तुम कम ही शुक्र अदा करते हो, तुम जानवर बन जाते हो, दिल दिमाग और समात की जो कुवतें हैं उनका इस्तेमाल ही नहीं करते। ये बड़ी खूबसूरत दलील है और तवज्जो दिलाई जा रही है कि ऐ लोगों तुम शुक्रगुजार बन जाओ, तो लोग जो है इनके अंदर शुक्र की बहुत कमी है, और खास तौर पर औरतें, औरतें बहुत नशुक्री हैं, शौहरों की नशुक्री, फिर अल्लाह की नशुक्री, अपने वालदैन की नशुक्री, और कितनी अरसा भी कोई नेकी करता रहे, अगर कोई रोज राइड दे, एक दिन राइड ना दे तो कहते हैं लो जी गाड़ी थी ना लेके चली गई, मुझे पूछा भी नहीं। रोज कोई ग्रोसरी करे, एक दिन ना करके दे, कहते हैं लो जी पूछा भी नहीं, सेल आई थी चलेगी, मुझे तो पूछा ही नहीं। और इसी तरह वालदैन सारी जिंदगी करते हैं, लेकिन जब वालदैन से मिलते हैं तो वालदैन को कहते हैं कि वालदैन हमारी जो है ना बाजी की करते हैं ज्यादा, मेरी नहीं करते, छोटी बहन की अम्मी ज्यादा करती है, मुझे नहीं पूछती। और इसी तरह शौहर सारी जिंदगी वो खिदमत करता है और ला के देता है कमा के, और फिर हम क्या कहते हैं कि तेरे घर मुझे कोई जो है वो सुख ही ना मिला। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें जो हैं तुम अपने शोहरों की नशुकरी करने वाली ना बनो। और आपने मेराज पर जब जहन्नुम को देखा तो आपने कहा कि मैंने जहन्नुम में औरतों को ज्यादा देखा। तो हमें इस बात से डरना चाहिए, आइए हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, आइए हम अल्लाह की पसंदीदा बंदियां बन जाएं, और हम ही नहीं मर्द भी, और लड़के भी और लड़कियां भी, गोया कि तमाम लोगों को अल्लाह के शुक्रगुजार होना चाहिए। कुल कह दीजिए हु अल्लाह जी, वही तो है, जरा कुम फिल अर्दी, जिसने तुम्हारी काश्त की है जमीन में, जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है, यानी जमीन में बीज भी डालना और उसको फिर फैला भी देना, वह इलैही तुहशरून, और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। किसान जमीन में बीज डालता है ना, पता भी नहीं चलता बीज कहाँ चले जाता है, और कई उसमें से उगते हैं कई उगते भी नहीं, लेकिन इंसान जो है चूंकि मट्टी से पैदा हुआ है तो कहा कि तुम्हें जमीन में फैला दिया। आप देखें नस्ल दर नस्ल, ससुराल का सिलसिला मेके का, पोतों का और नवासों का, है ना, तो ये सिलसिले जो हैं ये चल रहे हैं, ये किसने किया, अल्लाह ने इंसान को जमीन में फैला दिया और कहा कि तुम जमीन के होके ना रह जाओ, जमीन पर घर बनाओ और खाओ पियो और गाड़ियों में बैठो और फिर अल्लाह को भूल जाओ, याद रखना वह इलैही तुहशरून, और उसी की तरफ तुम लौटाए भी जाओगे। आयत 15 में भी यही बात कही थी ना, जमीन का जिक्र, रिज्क का जिक्र, जमीन के मुती होने का जिक्र कि जलूल है, और फमशूफी मना की बिहा व कुलू में रिज्क ही व इलैही नुशूर। अब आखिर सूरत का आ रहा है, फिर कहा जा रहा है व इलैही तुहशरून, और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे, मरने के बाद जमीन के गोशे गोशे से तुम घेर कर लाए जाओगे और अल्लाह के सामने हाजिर कर दिए जाओगे। वयकूलून मता हाजल वाद इन कुंतुम सादिकीन। अब यहां से जो है एक और मजमून शुरू हो रहा है, आप देख लें कि आयत नंबर जो है वो 24 से लेकर अब आखिर तक क्या बताया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह के पास जो है वो हाजिर होना है। और अहले मक्का क्या कहते थे, बता हाजल वादो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो बताओ कि ये वादा कब पूरा होगा, कयामत कब आएगी। अब ये नहीं कि वो उसकी तारीख जानकर उसकी तैयारी करना चाहते थे। बाज लोग कहते हैं ना पेपर कब होगा, बाज तालिबे इल्म ये पूछते हैं, बाज लोग पूछते हैं और जिन्होंने तैयारी करनी होती है उनको डेट से फर्क नहीं होता, रोज का सबक रोज याद करते हैं। तो अहले मक्का भी ये कहते थे कि कयामत कब आएगी, ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो बताओ ये वादा कब पूरा होगा, मता हाजल वादो, कौन सा वादा, कयामत का वादा, अजाब का वादा, इन कुन तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। कुल कह दीजिए इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, अल्लाह को पता है कयामत कब आएगी, क्योंकि कयामत जो है ये गैब के उलूम में से है, पैगंबर भी नहीं जानता। वह इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मेरी हैसियत क्या है कि मैं तो बस साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। और आप एक बात याद रखें कि अहले मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में तीन अकीदे खास तौर पर पेश किए, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद को मानते तो थे पर एक नहीं मानते थे, शिर्क करते थे, अल्लाह को मानते थे पर एक नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का इनकार क्यों किया कि बशर रसूल नहीं हो सकता, ये चीज उनके लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि कोई फरिश्ता होना चाहिए था, फिर गरीब यतीम, कोई अमीर होना चाहिए था, कोई सरदार होता ताइफ या मक्का का। तीसरी चीज जो उनके लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात थी, जिसका वो कतई इनकार कर रहे थे, वो ये थी कि इंसान जब मर जाएगा, गल सड़ जाएगा, तो दोबारा जिंदा कैसे किया जाएगा, वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए आप देखें कि मक्की दौर की सूरतों में बार बार जो तौहीद के दलाइल हैं और जो कायनात से और इंसान के जिस्म से और इर्द गिर्द की हकीकतों से जो तवज्जो दिलाई गई है वो ये कि इंसान तुम मरोगे, व इलैही तुहशरून, व इलैही नुशूर, और तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। अब यहां पे भी कि वो कयामत का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अच्छा फिर अजाब आता क्यों नहीं, वो कयामत आती क्यों नहीं, हम पकड़े क्यों नहीं जाते, तो कहा कि आप बताइए कि अल्लाह के पास इल्म है, मैं साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। फलम्मा रऊहू, फिर जब उसको देख लेंगे, किसको, उस अजाब को या कयामत को, उनको उसको आता देख लेंगे। जुल्फतन, जुल्फ के मानी क्या होते हैं, करीब के लिए आता है कि जब वो अजाब को या उस चीज को करीब देख लेंगे। सीअत, सीअत का रूट है सीन मौ हमजा, तो बिगड़ जाएंगे, सीअत खराब हो जाएंगे, वजूहू चेहरे, तो चेहरे बिगड़ जाएंगे, अल्लाजीना इन लोगों के चेहरे ही बिगड़ जाएंगे, अल्लाजीना उन लोगों के, कफारू जिन्होंने कुफर किया। वकीला, और इस वक्त इनसे कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दउन, उस वक्त उनसे कहा जाएगा यही है वो चीज जिसका तुम तकाजा करते थे। तो तद्दउन जो है दाल ऐन वाव से है और इसका मतलब होता है पुकारना, मांगना, और इद्दा मुबालगे का सीगा है कि किसी चीज को पुकार कर मांगना। तो ये है वो अजाब और ये है वो कयामत जिसका तुमने इनकार किया, और तुम तो इसको पुकार पुकार कर इसका तकाजा करते थे, तुम इसको मांगते थे। जैसे फांसी के तख्ते की तरफ जब मुजरिम को ले जाया जाए तो कैसे उसका चेहरा जो है वो तब्दील हो जाता है, कैसी उसकी हैयत चेंज हो जाती है। और अब आप देख लें कि यहां पे कहा जा रहा है कि एक तरफ इनके चेहरे बदल जाएंगे और दूसरी तरफ जो है उनसे कहा जाएगा अच्छा ये है वो अजाब, ये है वो कयामत जिसका तुम मुतालबा किया करते थे। कुल आ रही तुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए इन अहलकनी अल्लाह, अगर हिलाक कर दे मुझे अल्लाह, मम माया और जो मेरे साथ हैं, और रहमना या रहम करे हम पर, फमई उजीर उल काफिरीन, तो कौन पना देगा काफिरों को। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब दावत दी और मुख्तलिफ लोगों ने दावत को कबूल करना शुरू किया तो मक्का के मुख्तलिफ घरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को बददुआएं दी जाने लगी, जादू टूने किए जाने लगे ताकि आप हिलाक हो जाए, आपके कत्ल के मनसूबे बनाए जाने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे कहो कि अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को, साथी कौन थे रसूल अल्लाह के, सहाबा थे, सहाबियात थी, ईमान लाने वाले, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हिलाक कर दे और रहमना या फिर वो हम पर रहम कर दे, इनसे पूछो फमई युजीरुल काफिरीन मिन अजाबिन अलीम, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा, हम जिए या मरे, हम हिलाक हो या अल्लाह के फजल से जिंदा रहे, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा, तुम अपनी फिक्र करो कि जब अल्लाह का अजाब आएगा तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, दर्दनाक अजाब। कुल हुवर रहमान आमन्ना बिही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो हुवर रहमान, वो बड़ा रहीम है, बड़ा रहम करने वाला है, आमन्ना बिही हम उस पर ईमान ले आए, वालेही तवक्कलना और उसी पर हमने भरोसा किया, कि तुम इनकार कर रहे हो हम ईमान लाए, हमारा भरोसा जो है वो जत्थों पर, वसाइल पर, माबूदाने गैर, दौलत, बागों पर नहीं है, हमारा भरोसा तो अल्लाह पर है, वालेही तवक्कलना, हस्बुनल्लाहु नेमल मौला व नेमल नसीर। فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بس ان قریب इनको पता चल जाएगा कि मन हुआ फी दलालिम मुबीन, के कौन है जो सरी गुमराही में पड़ा हुआ है। इस सूरत को सूरत जो है सूरत रहमानियात भी कहा जाता है, क्यों, इस आगाज में भी अल्लाह ताला ने गफूर की बात की और जो अपनी जब नेमतों का जिक्र किया तो रहमान की सिर्फ जो है वो उसका भी जिक्र किया। आपने ये बात पढ़ी ना कि अल्लाह ही है जो कि लतीफ भी है और खबीर भी है और साथ ही जो है वो रहमान है जिसने जो है वो नेमतों से नवाजा, तो आखिर आखिर में फिर जो है वो रहमान का जिक्र है। आयत नंबर 3 में भी है ना, मा तराफी खल्क रहमान मिन तफावत, कायनात का जब जिक्र हुआ तो रहमान का, तो इब्तदा में भी अल्लाह की रहमानियत का जिक्र, आखिर में भी अल्लाह की रहमानियत का जिक्र, तो अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, तो जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सरी गुमराही में पड़ा हुआ है, क्योंकि अहले मक्का जो थे वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान जो थे इनसे कहा करते थे कि ये जो है ये सिराते मुस्तकीम से हटे हुए लोग हैं, हम सीधे रास्ते पे हैं, वो ये दावा करते थे। कोला रही तुम, कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए क्या देखा तुमने, असल में आ रही था, आ रही था जब आता है, जैसे पीछे भी आयत 28 में भी आ रही तुम आया, अब यहां पे भी आ रही तुम, वैसे तो इसके मानी होते हैं देखना, लेकिन इसके मानी होते हैं सोचने समझने की दावत देना, क्या तुमने कभी सोचा भी, क्या मतलब है इसका कि ऐ लोगो क्या तुमने कभी सोचा, इन असबहा मा उकुम गौरन, अगर हो जाए पानी तुम्हारा गौरन, और गौर जो है इसके मानी क्या है, गौर का लफ्ज भी जो है ये गहरे के लिए आता है, तो सूरत मुल्क में दो लफ्ज आए, एक लुज्जा का वो पहला दर्जा है, गौरन जो है ना ये दूसरा दर्जा है, गौरन जो है गैन वौरा से है, नशेबी जमीन की तरफ नीचे उतरना, गार के लिए भी आता है ना खो, और आप उर्दू में भी कहती हैं मैंने बहुत गौर किया, आप अपनी सोचों में बहुत गहराई में चली जाती हैं, मैंने गौर व खौज किया, तो जेर जमीन गहराई, और गहराई के साथ जैसे जगह का तस्वुर भी पाया जाता है, तो गौर के मानी है कि जमीन के नीचे गहराई में चला जाना, सतह जमीन से नीचे नशेबी जो इलाका है इनसे पूछो, और असबा के मानी क्या है, हालत की तब्दीली, अब तो पानी है ऊपर और लोग हैं इस्तेमाल करते, इन असबा माकुम गौरन, और अगर तुम्हारा पानी जो है वो नीचे चला जाए जमीन के अंदर चला जाए, फमैया अतीकुम बिमा इमईन, फिर कौन है जो इस पानी की पानी को जो है, फमैया अतीकुम जो ले आएगा तुम्हारे पास, बिमा इन पानी, और मईन, मईन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और मईन जो है इसका मजदर है मीम आयन नून, तो मईन जैसे आयन चश्मे के लिए भी आता है ना, बहता हुआ चश्मा, तो कौन है जो इस पानी को जारी करेगा, इस पानी की बहती हुई सूते तुम्हें निकाल कर ला देगा, और गौरन जो है ये गहरे के लिए आता है, और मजदर भी से कहते हैं, गौरन भी मजदर है और गौरन भी मजदर है, और बहरहाल अब इसका जो है अहदीस में इसका जवाब भी आता है, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت ملک کی اس آخری آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے اللہ یاتینا بہی وہو رب العالمین، اور وہ اللہ ہی ہے جو اس پانی کو لاتا ہے اور وہ ہے سب جہانوں کا رب. اور اب یہاں پہ بھی سوال ہے کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین چوس جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی جو ہے وہ لے آئے. تو معین کہتے ہیں جاری، صاف اور نتھرا ہوا پانی. تو یہ جو پانی میں اور آپ پیتے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر پانی نیچے گہرائی میں چلا جائے، ساری مشینیں بھی جو ہے نا مل کر کوشش کریں گی تو پانی کو نکالنے میں ناکام ہو جائیں گی. بہت سے علاقے ہیں پانی نہیں آتا وہاں پہ. تو جہاں پہ بھی پانی موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سورت ملک میں ایک طرف جو ہے آسمان کی طرف جو ہے وہ دعوت نظارہ دی گئی، اور دوسری طرف جو ہے آسمان جس میں ستارے جگمگ جگمگ کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ ہے. تیسری طرف جہنم سے ڈرایا گیا، اور چوتھی طرف یہ کردار بتایا گیا کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے انعامات ہیں. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر جو ڈسپلن پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ زمین کا جو ہے وہ ذلول ہونا، اور زمین میں سے رزق کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سماعت، بصارت اور فؤاد، اس کے دلائل دیے، اور ساتھ ہی پانی کی دلیل دے کر یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھی کہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے. خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اور بادشاہت بھی اسی کی. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ جو چاہے کرے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ ہے وہ سورت ملک جو رات کو سونے سے پہلے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھنے سے مراد کیا ہے، کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے اور پھر موت کی اور آخرت کی تیاری کی جائے. کیونکہ یہی وہ سورت ہے کہ احادیث میں جس کا نام جو ہے، کیا کیا نام اور ہمیں ملتا ہے، اس کا نام الواقعہ بھی ہے، منجیہ بھی ہے، المانعہ بھی ہے، ہے نا؟ تو یہ کس سے منع کرتی ہے؟ یہ حرام کاموں سے منع کرتی ہے نا. یہ عذاب کو ہم سے روک دے گی، یہ ہمیں نجات دے دے گی، یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور قیامت واقعہ ہو کر رہے گی، موت آ کر رہے گی، انسان کہاں جائے گا بھاگ کر. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.